और सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई की यादें वापस आ गई थीं। वहीं आहान अचानक से मुंह फुलाकर खड़ा हो गया और बोला, वैसे भाभियों, आप लोगों ने एक साथ मिलकर इतना बड़ा प्लान बना लिया और एक बार भी हमें भनक तक नहीं लगने दी। हम भी तो अरमान भाई से प्यार करते हैं, हम कितना ज़्यादा परेशान हो रहे थे उनकी यादों को लेकर, लेकिन आप लोगों ने तो अपनी अलग अलग खिचड़ी पका रखी थी। आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकती हैं? क्या आप लोगों को हम मासूम बच्चों पर तरस नहीं आया, रहम नहीं आया? आपने देखा था ना, भाई गुस्से से कैसे हमें घूर रहे थे। हम उनकी उन गुस्से भरी आँखों का सामना कर रहे थे, लेकिन हमें तो पता ही नहीं था कि वो गुस्सा पूरी तरह दिखावटी था। असल में तो वो पहले से ही ठीक हो चुके थे। आहान की शिकायत में सच्चा दर्द था। वहीं ध्रुव भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला था, आज मैं आहान की बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ, वो जो कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है। वहीं आकाश सुमित की भी आंखों में ढेर सारी शिकायतें मौजूद थीं, लेकिन खुलकर अरमान के सामने कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। फिलहाल उसी वक्त अविनाश आगे बढ़ा। उसने अरमान के कंधे पर हाथ रखा और कहा, वैसे मानना पड़ेगा, तुम हर तरह से लायक और काबिल हो, समझदार भी हो, लेकिन इन सब चक्करों में मेरी गोरी बहुत रोई है। मेरी गोरी की आंखों में इस तरह आंसू नहीं आने चाहिए थे। आगे से चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन मेरी गोरी की आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए। जैसे ही अविनाश ने आस्था की हालत को याद करते हुए फिक्रमंद होकर ये बात कही, अरमान की नज़रें फिर से आस्था पर टिक गईं। उसने उसे गहरी पश्चाताप भरी आंखों से देखना शुरू कर दिया। तभी नानी माँ उठी और बोली, भले ही अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रियंका के वहां से आने के बाद राजवीर चुप नहीं बैठेगा। वो बहुत खतरनाक है, अब वो गोरी को ही अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा। हमें कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम सब ये घर छोड़कर अपने गाँव चले, हमारे गाँव में वो इतनी आसानी से नहीं पहुँच पाएगा। और अब तो गाँव में दुर्जन सिंह के अंत के बाद चारों तरफ शांति ही शांति है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। जैसे ही नानी माँ ने अपना सुझाव दिया, सब एक दूसरे को देखने लगे। क्या नानी माँ डेविल किंग यानी अरमान सिंघानिया को मुंह छुपाकर भागने की सलाह दे रही थीं? तभी आस्था ने पूरी समझदारी से नानी माँ की ओर देखते हुए कहा, नहीं, हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, अब वक्त आ चुका है कि हम राजवीर जिंदल का सामना करें। आप जानती हैं नानी माँ, हमें सबसे बड़ा दुख इसी बात का था कि हम उसे सही सजा नहीं दे पाए। शायद इसी वजह से वो एक बार फिर जिंदा होकर हमारी आंखों के सामने खड़ा है, लेकिन इस बार हम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस बार उसने हमारे पति को निशाना बनाया है, हमारे रिश्ते का मजाक उड़ाया है, और ऊपर से वो सन की सम्राट, वो भी किसी से कम नहीं है। पता नहीं अपने अगले कदम में वो क्या कर बैठे, और वैसे भी हमारे बच्चे को निशाना बनाकर उसने सारी हद पार कर दी है। अब हम उन्हें सबक सिखाए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आस्था की बातों में ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वो सच में किसी युद्ध की तैयारी कर चुकी हो। तभी रश्मि अचानक आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ गईं। सभी लड़कियां, राधिका, वंशिका, रौनक और एंजल फटाफट आस्था के साथ उसके पास पहुंची। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और पूछा, क्या बात है रश्मि दीदी, आप इस तरह चुप क्यों हो गईं? आप इतनी टूटी हुई क्यों लग रही हैं? रश्मि ने बारी बारी से सबको देखा और कहा, हम आप सबसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, इतना बड़ा प्लान तुम लोगों ने मिलकर बना लिया और एक बार भी हमें बताना जरूरी नहीं समझा। क्या मैं लड़कों को जाकर बता देती, क्या आकाश को जाकर सब कुछ खोल देती? तुम लोगों ने हमें पराया महसूस करवाया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। ये कहते कहते रश्मि रो पड़ी। उनकी आंखों में आंसू देखकर राधिका और बाकी सभी लड़कियां तड़प उठीं। तभी आस्था ने आगे बढ़कर कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं रश्मि दीदी, आप हमारी जिंदगी का वो हिस्सा हैं जिसकी अहमियत आप सोच भी नहीं सकती। आपको क्या लगा हमने कोशिश नहीं की आपको बताने की? जिस वक्त हम डार्क वर्ल्ड जाने का प्लान बना रहे थे उस वक्त आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। राधिका दीदी आपके कमरे में गई थी आपको बताने के लिए, लेकिन उस वक्त आप सो रही थी। आकाश भैया ने खुद उन्हें मना कर दिया था कि आपको सोने दिया जाए। आप ही बताइए इस हालत में हम आपको कैसे शामिल करते? अभी आपका पूरा टाइम चल रहा है, किसी भी पल आप खुशखबरी दे सकती हैं। इस सिचुएशन में हम आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना चाहते थे, हम सिर्फ और सिर्फ आपको हर तनाव से दूर रखना चाहते थे, इसलिए सब कुछ छुपाया। हॉल में फिर से खामोशी छा गई, लेकिन इस बार उस खामोशी में शिकायत से ज्यादा अपनापन था। जैसे ही आस्था ने मासूमियत से सारी बातें रश्मि को समझाई, रश्मि का गुस्सा एक पल में ही गायब हो गया। वो जानती थी कि सबने सिर्फ उनकी फिक्र की वजह से ही उन्हें कुछ नहीं बताया, वरना सब उनसे कितना मान सम्मान और प्यार करते हैं, ये बात किसी से छुपी नहीं थी। तभी रौनक जल्दी से बोली, अरे रश्मि दीदी, आपको पता है अगर आप नहीं थी तो आपकी कमी मैंने डबल डबल काम करके पूरी की है। आप जानती हैं जब वो ब्लैक डबल आस्था की तरफ पढ़ने वाला था तो मैंने उसके खाने में ऐसी दवा मिला दी थी कि वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। आप नहीं थी तो आपके हिस्से का काम भी मैंने कर दिया, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। रौनक ने आंख मारते हुए शरारती अंदाज में ये बात कही। तभी राधिका भी तुरंत बोली,
हाँ रश्मि, तुम्हें पता है वो ब्लैक डेविल आस्था के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसी वक्त वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही राधिका ने भी ये लाइन कही, अरमान के कान तुरंत खड़े हो गए। वो गुस्से में तेजी से आस्था की तरफ बढ़ा और उसे कंधों से पकड़कर बोला, क्या कहा तुमने? उस सम्राट ने तुम्हें छूने की कोशिश की? कहाँ था वो? उसने हिम्मत कैसे की? मैं अभी के अभी जाकर उसके चिथड़े उड़ा दूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए अरमान बहुत ही डरावना लग रहा था। एक पल के लिए अरमान की इस तरह की बातें सुनकर सभी लड़कियां पूरी तरह से सहम गई थीं और एक तरफ खड़ी हो गई थीं। तभी तक आंखों में गुस्सा लिए सभी लड़के तुरंत तुरंत आगे आए और आहान अरमान का हाथ थामकर बोला था, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, अब हमें ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। आखिरकार उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी भाभी पर गलत नजर डालने की? चलिए हम आपके साथ हैं, फटाफट चलते हैं और सम्राट का किस्सा खत्म करके आते हैं। ये बोलकर वो कहीं न कहीं पूरी तरह से तैयार हो गया था। अब उन सबको ऐसे रूप में देखकर सभी लड़कियां हैरान हो गई थीं। वहीं उन आस्था ने जैसे ही उन सबको गुस्से में देखा तो आस्था मन ही मन सोचने लगी थी कि उन्हें इस तरह की बातें पूरे परिवार के सामने नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन भावनाओं के बहाव में बहकर वो सबके सामने ये कह चुके थे कि सम्राट आस्था को छूने के लिए आगे बढ़ रहा था, इसीलिए सब लड़कों के अंदर का गुस्सा पूरी तरह से आज फूट कर बाहर निकल रहा था। फिलहाल आस्था तुरंत अरमान के पास आई थी और बोली थी, अरमान जी प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? अगर आप इस तरीके से डायरेक्ट वहां जाकर हंगामा करेंगे और सम्राट की जान लेंगे तो आपको क्या लगता है हमारा बदला इससे पूरा हो जाएगा? आप एक सम्राट मारोगे, अगले दिन दूसरा सम्राट पैदा हो जाएगा। नहीं अरमान जी, इस बार हमें इस बीमारी को जड़ से खत्म करना है। राजवीर और सम्राट को न केवल हमें मारना है बल्कि उनके अंदर जो जहर है उसे भी खत्म करना है। जैसे ही आस्था ने कुछ सोचते हुए ये कहा, सब लोग हैरानी से भर गए थे। लेकिन अरमान दांत पीसते हुए बोला था, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें देखने की भी और तुम्हें छूने की कोशिश करने की? इसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी, उसकी तो मैं आंखें निकाल लूंगा। ये बोलते हुए अरमान के होंठ अपने आप ही गुस्से से कांप रहे थे।
वहीं अविनाश और एंजल दोनों ही अरमान को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों अरमान के एक एक मूवमेंट और एक एक पल को बहुत ध्यान से परख रहे हों, जैसे समझने की कोशिश कर रहे हों कि अरमान कब क्या करता है। हालांकि उनकी नानी माँ भी वहीं मौजूद थी, लेकिन उनका ध्यान पूरी तरह से हर पल अरमान पर ही टिका हुआ था। फिलहाल एंजल ने अपनी आंखों के इशारे से अविनाश से कुछ बातें की थीं और अविनाश ने भी हल्का सा सिर हिलाकर उसे शांत रहने का इशारा कर दिया था। तभी दादाजी तुरंत आगे आए थे और अरमान को देखकर बोले थे, बेटा तुम्हारा गुस्सा होना पूरी तरह से जायज़ है, लेकिन सम्राट और राजवीर को सबक सिखाने के लिए हमारी बेटियों ने अपनी जान खतरे में डाली है। क्या तुम उनका ये सब कुछ बर्बाद हो जाने दोगे? उनकी मेहनत को बर्बाद होने दोगे? नहीं, तुम्हें कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी राजवीर और सम्राट का सामना करना अगर इतना ही आसान होता तो अब तक हम अपने सारे सिक्योरिटी गार्ड को लेकर उसके विला को नष्ट करवा चुके होते। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। फिलहाल गरम-गरम नहीं खाना चाहिए, चीज़ों को ठंडा करके खाना चाहिए और सही मौके की तलाश करनी चाहिए। क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? लेकिन अरमान का गुस्सा दोबारा पूरी तरह से भड़कता जा रहा था। वो अपने आप ही कल्पना करने लगा था कि किस तरीके से सम्राट ने आज आस्था की खूबसूरत कमर को छुआ होगा, उसके गर्दन पर किस किए होंगे, उसके बदन पर अपने हाथ चलाए होंगे। ये सब कल्पना करते ही अरमान के सारे रोम खड़े हो गए थे। गुस्से की वजह से उसके हाथों की नसें भी साफ दिखाई दे रही थीं। आस्था अरमान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार अरमान क्या करने की कोशिश कर रहा है। तभी अरमान ने आस्था को देखते हुए कहा था, लेकिन उसने मेरी आस्था को छूने की कोशिश की है, इसकी सज़ा तो मैं उसे देकर ही रहूंगा। जब तक मैं उसे इसकी सज़ा नहीं दे देता मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आस्था समझ चुकी थी कि अरमान का गुस्सा अब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। दादाजी ने एक पल के लिए गहरी सांस ली और फिर चुपचाप अपनी नज़रें आस्था की ओर उठा दीं। उनकी आंखों में साफ साफ ही इशारा था, मानो बिना शब्दों के ही कह रहे हों कि अब सिर्फ वही है जो अरमान को इस वक्त दागविला जाने से रोक सकती है। आस्था ने भी दादाजी की उस खामोश विनती को समझ लिया था और वो धीरे धीरे अरमान की तरफ बढ़ी, क्योंकि अब अगर कोई अरमान को रोक सकता था तो वो थी सिर्फ और सिर्फ आस्था। आस्था ने तुरंत उसका हाथ थामते हुए कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं अरमान जी, आपको क्या लगता है हम उसे खुद को छूने देते? हमने उसकी परछाई तक को अपने ऊपर पड़ने नहीं दिया। आप जानते हैं हमने उसे बहुत स्मार्टली हैंडल किया था, और सबसे बड़ी बात मारिया दीदी हमारे साथ थी। मारिया जो अब तक एक तरफ खड़ी होकर ये सारा ड्रामा देख रही थी, अंदर ही अंदर अरमान की यादें वापस आने की खुशी मना रही थी। टाइगर के चेहरे पर भी सुकून साफ झलक रहा था। आखिरकार अरमान की यादें जाने का सबसे बड़ा असर उन्हीं दोनों पर पड़ा था। जब से अरमान की यादें गई थीं, वे दोनों भी उससे दूर दूर हो गए थे। अरमान ने एक नज़र मारिया पर डाली, फिर टाइगर की ओर देखा और सीधा जाकर उसे गले से लगा लिया। टाइगर ने भी तुरंत उसे कसकर गले लगाया और कहा, किंग, आई एम सो हैप्पी यू आर बैक। इतना कहकर उसने हल्का सा सिर झुका लिया। फिर अरमान ने मारिया की ओर देखा। मारिया तुरंत सिर झुकाकर उसके सामने खड़ी हो गई, लेकिन अरमान ने आगे बढ़कर कुछ कागज उसके हाथों में थमा दिए और कहा, बेटे के होने की बहुत मुबारक हो मारिया। वो कागज स्विट्जरलैंड में एक बड़े से विला और उससे जुड़ी प्रॉपर्टी के थे, जिन्हें अरमान ने टाइगर और मारिया के नाम कर दिया था। अब तक बेटे के जन्म के बाद वो उन्हें कोई खास तोहफा नहीं दे पाया था। ये सुनकर मारिया की आंखों में हल्के से आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने जज्बात किसी के सामने जाहिर नहीं होने दिए। तभी दादाजी हंसते हुए बोले, चलो देर आए दुरुस्त आए, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे बेटे की यादें वापस आ गईं। इससे ज्यादा जरूरी हमारे लिए कुछ नहीं, वरना उस खड़ूस और बोरिंग अरमान को देखकर तो हमारा दिमाग ही खराब होता जा रहा था। हॉल में हल्की सी हंसी गूंज गई, लेकिन इन सब हालातों के बीच वसुंधरा और वीर चुपचाप एक तरफ बैठे थे। वे सबको ध्यान से देख रहे थे। दरअसल वसुंधरा की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो अरमान के सामने आ सके। उन्होंने पहले जो गलतियां की थी, उनका बोझ उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। तभी अरमान की नजर उन दोनों पर भी जाकर ठहर गई। वो खुद आगे बढ़ा और उनके सामने जाकर कुछ कागज उनके हाथों में रख दिए। ये आपका रायचंद विला और इंडस्ट्रीज के कागज हैं। आज से आप लोग आजाद हैं, अपने घर में रहने के लिए पूरी तरह फ्री। आपको किसी दबाव या मजबूरी में यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। जैसे ही अरमान ने इतने बड़प्पन से वीर और वसुंधरा को उनकी सारी प्रॉपर्टी वापस की, उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि अरमान उन्हें उनकी सारी जायदाद यूं लौटा देगा। अचानक वीर की आंखों में आंसू आ गए। उसका गला भर आया था, जैसे बरसों से दिल में दबा हुआ बोझ एक ही पल में बाहर निकलना चाहता हो। वो कुछ क्षणों तक चुपचाप अरमान को देखता रहा, फिर कांपती आवाज में बोला, अरमान भाई, मुझे अब इन सब की जरूरत नहीं।